हालांकि दादाजी ने उसे सारा सच बताने की कोशिश की थी, साथ ही साथ प्रियंका ने भी जो कुछ उसे पता था वो बता दिया था, लेकिन अभी भी उसके मन से आस्था को लेकर शक नहीं निकल रहा था। बार बार उसके दिमाग में आस्था का मासूम सा चेहरा आ रहा था और वो सोचने लगा कि जरूर वीर ने ही आस्था को उसके खिलाफ प्लांट किया है, क्योंकि आस्था जिस तरह से गोल गोल बातें करती है, जिस तरह से मासूम बनने की एक्टिंग करती है, ये बात अरमान को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही थी। और कहीं ना कहीं वो यही सोच रहा था कि वीर ने अरमान का ध्यान भटकाने के लिए आस्था का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो आस्था से सारा सच उगलवा कर रहेगा। अब आगे, क्योंकि वीर रायचंद ये बात अच्छी तरह से जानता था कि आज रात को उसकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग होनी थी, हो सकता है वीर ने आस्था को मीटिंग रोकने के निर्देश दिए हों। कहीं ना कहीं अरमान अपना दिमाग जोरों से चलाने लगा था और अब आस्था को अपने कमरे में ना पाकर वो आस्था को ढूंढने निकल गया था। जल्दी ही वो सीढ़ियों से नीचे आ गया था। जब उसने किचन की लाइट जलती हुई देखी तो वो जल्दी से किचन की ओर जाने लगा, क्योंकि उस वक्त ऑलरेडी 2:30 बज चुके थे और 3 बजने वाला था। ऑलरेडी सभी नौकर सर्विस क्वार्टर में आराम करने के लिए चले गए थे, क्योंकि उन्हें रात में 2 घंटे आराम करने की परमिशन थी। अब जैसे ही अरमान वहां गया, उसने आस्था को दुपट्टे में बर्फ लपेटती हुई दिखाई दी। अभी तक उसकी नज़र अपनी टी शर्ट पर नहीं पड़ी थी, क्योंकि आस्था ने अपने आप को अच्छी तरह से दुपट्टे से कवर किया हुआ था और दूसरे दुपट्टे में वो बर्फ रख रही थी। जब अरमान ने आस्था को देखा, आस्था उस वक्त बर्फ को अपने दुपट्टे में बांध रही थी। अब आस्था को इस तरह से अपने दुपट्टे में बर्फ बांधते हुए देखकर अरमान का शक और भी बढ़ गया था। वो सोचने लगा कि क्या ये लड़की इस बर्फ के इस्तेमाल से मुझ पर हमला करना चाहती है, इसीलिए ये मेरे खिलाफ हथियार तैयार कर रही है। हो सकता है कि वीर ने ही इसे पूरी तरह से ट्रेंड करके भेजा हो। कहीं ना कहीं अरमान का दिमाग जोरों से चल रहा था और अचानक से आस्था के पीछे जाकर उसने एक बार फिर उसके पास जाकर धीरे से कहा, ये क्या कर रही हो तुम? आस्था धीमी आवाज सुनकर डर गई। अचानक से वो पलटी तो अपना बैलेंस नहीं बना पाई और जैसे ही वो गिरने को हुई, अरमान ने उसे तुरंत पकड़कर उसकी कमर पर से थाम लिया। कुछ पल वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। आस्था उस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई थी और अरमान आस्था का इस तरह से घबराना देखकर समझ चुका था कि आस्था उससे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। तब अरमान उसे घूरते हुए कहने लगा, इस वक्त रात को तुम फ्रीजर में क्या कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम यहाँ पर कोई ना कोई हथियार ढूंढने के लिए आई हो, जिससे कि तुम मेरा मर्डर कर सको? तो अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था की आंखें हैरत से फैल गईं। वो सोचने लगी कि इस खड़ूस आदमी को आखिरकार हुआ क्या है, वो इस तरह की बेवकूफी भरी बातें क्यों कर रहा है? भला हम इनका मर्डर क्यों करेंगे? अगर हमें इनका मर्डर करवाना ही होता तो हम कान्हा जी से ना कह देते, कान्हा जी तो हमारी सारी बातें मानते हैं। जैसे ही आस्था एक बार फिर अपनी सोच में गुम होकर अपने कान्हा जी से बातें करने लगी, तब अरमान चिढ़ते हुए कहने लगा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम हो कि कहीं और ही गुम हो, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है? तुम्हें मुझसे इतना सा भी डर नहीं लगता है? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो आस्था। अरमान सिंघानिया, तुम चाहे मेरी जिंदगी में प्लांट की गई हो या अपनी मर्जी से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, लेकिन अब तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ चुका है। आस्था को अरमान की बातों का ज्यादातर मतलब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना तो समझ चुकी थी कि जो कुछ भी अरमान कह रहा था वो बड़े ही तुस्से और नफरत से कह रहा था, क्योंकि अरमान का गुस्सा और नफरत उसकी बॉडी लैंग्वेज में साफ साफ झलक रहा था। तभी आस्था ने जो बर्फ उस दुपट्टे में तैयार किया था फटाफट से उसे उठा लिया और अरमान की ओर देखकर कहने लगी, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा कहकर आस्था जल्दी ही सीढ़ियों पर चलने लगी थी और अरमान ने जैसे ही आस्था की बात सुनी उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो सोचने लगा, ये लड़की आखिर अपने आप को समझती क्या है, ये मुझसे ना बात करने वाली होती कौन है? तो इसीलिए गुस्से से वो आगे बढ़ा और उसने जैसे ही आस्था को पीछे से पकड़ने की कोशिश की, अचानक से आस्था का दुपट्टा उसके हाथों में आ गया था, जो दुपट्टा उसने अपनी टी शर्ट पर लपेट रखा था ताकि कोई उसे ऐसे कपड़ों में ना देखे, क्योंकि उसने नीचे ट्राउजर और अरमान की टी शर्ट पहनी थी जो कि उसकी थाई तक ही आ रही थी। अरमान ने उसका दुपट्टा लेते ही आस्था ने तुरंत अपने हाथों को अपने चेस्ट के आगे कर लिया था और अरमान से बोली, क्या बदतमीजी है मिस्टर सिंघानिया, ये क्या कर रहे हैं आप? तब अरमान हैरानी से आस्था को देखने लगा। आस्था उसकी टी शर्ट में सामने खड़ी हुई थी, ऊपर से उसके बाल खुले हुए थे क्योंकि आस्था उससे पहले सो रही थी और आस्था हमेशा अपने बाल खोलकर ही सो जाया करती थी, क्योंकि अगर वो छोटी में गुंथे हुए बालों के साथ सोया करती थी तो उसके सर में दर्द हो जाया करता था, तो तब से वो अपने बाल खोलकर सोने लगी थी। अब आस्था के घने लंबे बाल और ऊपर से वो अरमान की टी शर्ट में थी जिसमें वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। कमरे की लाइट काफी कम थी लेकिन आस्था की खूबसूरती की वजह से ऐसा लग रहा था मानो के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही हो। आस्था का खूबसूरत बेदाग चेहरा अरमान की आंखों के सामने था और अरमान आस्था को इस तरह से कितनी ही देर तक खोया खोया सा देखता रहा। और प्लेग्राउंड में गाना बज रहा था। खोया खोया चांद, खुला आसमान, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी हो, खोया खोया। मस्ती भरी हवा जो चली, खिलखिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली, कि उनको तो बुलाओ, ओहो, खोया खोया। तारे चले, नजारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ, ओहो, खोया खोया। ऐसे ही रात, भीगी सी रात, हाथों में हाथ, होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ, ओहो, खोया खोया। अरमान उस गाने को महसूस कर रहा था, लेकिन आस्था, जो कि एक हाथ पर बर्फ पकड़े हुए थी, एक हाथ से अपनी चेस्ट वगैरह को कवर कर रही थी, ताकि अरमान को उसके ज्यादा कुछ हिस्सा दिखाई ना दे। लेकिन अरमान आस्था को इस तरह से देखने के बाद धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और उसके करीब जाकर खड़ा हो गया, और बिना सोचे समझे उसने आस्था को अपनी गोद में उठा लिया था, क्योंकि इस वक्त वो आस्था की खूबसूरती में पूरी तरह से डूब सा गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आस्था के साथ क्या कर रहा है। वहीं अचानक आस्था अरमान की यूं गोद में उठाई जाने पर काफी हद तक बेचैन सी होने लगी थी, और इसी घबराहट में उसके हाथ से वो बर्फ वाला दुपट्टा भी गिर चुका था। अरमान की गोद में आस्था कसम साने लगी थी, क्योंकि वो इस तरह से अरमान की गोद में नहीं जाना चाहती थी, और वो मन ही मन में सोचने लगी, कान्हा जी, ये अब इन खड़ूस सिंघानिया को क्या हो गया है, ये हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अगर इन्होंने हमें ऐसे देखकर हमारी इज्जत पर हमला कर दिया तो? नहीं नहीं कान्हा जी, अगर इन्होंने आज हमारे साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी करी तो हम पक्का इनका सर फोड़ देंगे, पर खुद को बचा लेंगे। कान्हा जी, हमारी इज्जत की रक्षा करना, ऐसा कहकर आस्था भगवान से प्रार्थना करने लगी। लेकिन उस वक्त अरमान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि वो रूड एरोगेंट अरमान सिंघानिया ना होकर एक बड़ा ही रोमांटिक स्वभाव का पति था, जो कि इस वक्त अपनी खूबसूरत पत्नी को देख रहा था, क्योंकि आस्था की खूबसूरती उसे सब कुछ भूलने पर मजबूर कर रही थी। कहां तो अरमान को अभी तक सबसे इस बात का गुस्सा था कि उसकी मीटिंग्स कैंसिल हो गई हैं।
इतना ही नहीं, उसका लैपटॉप भी आस्था ने खराब कर दिया था, जिसमें मीटिंग्स की पूरी डिटेल्स थी। हालांकि अरमान ने देव को गुस्से से रात भर बैठकर एक बार फिर सारी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए बोल दिया था, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट मीटिंग आज थी वो नहीं कर पाया, उसकी वजह से वो बहुत गुस्से में था, और अपना वही गुस्सा वो आस्था पर उतारना चाहता था। लेकिन अब आस्था को यूं करीब देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर, वो अपनी सोचने समझने की सारी शक्तियां खो बैठा था, और वो तो बस बेतहाशा आस्था को देखता रहा। ऐसा लग रहा था कि आस्था को देखकर अपने जन्मों जन्म की प्यास बुझा रहा था। जल्दी उसने आस्था को इस तरह से गोद में पकड़े हुए ले जाकर बेड पर लिटा दिया, तो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अब तो आस्था और डरते जा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में कैसे निकले और अरमान को कैसे होश में लाए, क्योंकि अरमान की आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आस्था को पाने का जुनून ही दिखाई दे रहा था।